नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के लिए नई तारीख जारी की। दिल्ली सरकार ने अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने, मामूली उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, अदालती मामलों में कमी लाने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। रेलवे ने कोटा नागदा वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी का परीक्षण किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज ढाका में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगसी ने विश्व बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप का कांस्य पदक जीता। और महिला क्रिकेट में भारत ने पांचवें और अंतिम 2020 मैच में श्रीलंका को 15 रन से हराकर श्रृंखला 5-0 से जीती। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के लिए नई तारीख जारी की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सभी गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण भी किया जा चुका है।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रीणवा ने बताया कि अब मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 6 जनवरी 2026 को किया जाएगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण और गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च 2026 को किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
दिल्ली सरकार ने दिल्ली जनविश्वास उपबंध संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना, मामूली उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, अदालती मामलों में कमी लाना और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार व्यापार सुगमता और बेहतर जीवन यापन के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये विधेयक 5 जनवरी से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित किया जाएगा। इसके लागू होने पर हर 3 वर्ष बाद जुर्माने की रकम स्वतः 10% तक बढ़ जाएगी, ताकि महंगाई के हिसाब से जुर्माना प्रभावी बना रहे। रेलवे ने कल राजस्थान के कोटा से मध्य प्रदेश के नागदा के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ट्रायल रन के दौरान रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। तेज गति के बावजूद रेल के अंदर रखे पानी के ग्लास स्थिर रहे। वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक वर्ष रहा। इस वर्ष कई की नीतियों का देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान रहा और मजबूत इरादों ने सार्थक परिणाम दिए। हमारी विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में आज हम चर्चा कर रहे हैं, 2025 में भारत किस तरह दुनिया के नए उत्पादक देश के रूप में उभरा। एक रिपोर्ट।
इस साल भारत अपने औद्योगिक और आर्थिक विकास में 7.8% की अनुमानित वृद्धि के साथ एक निर्णायक मोड पर पहुंच गया है। बढ़ते विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बढ़ती औद्योगिक क्षमता के साथ देश ने खुद को तेजी से बढ़ते बाजार और प्रमुख वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित किया है। इस साल नोएडा में भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया। यह साबित करता है कि भारत अब जटिल चीजें बना रहा है। इसी तरह ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा विनिर्माण क्षमता तक पहुंचकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस बीच सौर मॉड्यूल उत्पादन 2014 में 2.3 गीगावाट से बढ़कर 2025 में 100 गीगावाट हो गया है।
आज 11 वर्ष में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ चुकी है। हम नए नए डैम बना रहे हैं ताकि हाइड्रो का विस्तार हो और हमें क्लीन एनर्जी की उपलब्ध हो। भारत मिशन ग्रीन हाइड्रोजन लेकर के आज हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। भविष्य की ऊर्जा को ध्यान में रख करके भारत न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बहुत बड़े इनिशिएटिव ले रहा है।
इस साल विमानन विनिर्माण में भी तेजी देखी गई, जिसमें लगभग 2200 नए विमान शामिल किए गए। 2030 तक यात्री यातायात 63 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। दूसरी ओर देश के उद्योगों ने लाखों लोगों के लिए रोजगार का भी सृजन किया है। अकेले इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र लगभग 25 लाख नौकरियों की सहायता प्रदान करता है। पुरुषों के लिए राष्ट्रीय रोजगारी दर भी घटकर 5% हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए सुधारों ने शासकीय ढांचा को मजबूत आकार दिया है। नए GST सुधारों में 5% और 18% के तर्कसंगत कर स्लैब से उत्पादकों के लिए लागत और संचालन में आने वाली दिक्कतों में कमी आई है।
ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे। और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाए।
भारत गहरी मूल्य श्रृंखला, साहसिक नीतिगत कार्रवाई, बढ़ते ग्लोबल साझेदारी और तेजी से कुशल कार्यबल के साथ दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन और निर्यात अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। शिवांग और समर्थ के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
वर्ष 2025 सेना के अभियान को भी अंजाम तक पहुंचाने और शत्रु को बेअसर करने के मामले में सफलता का एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार 9 आतंकी शिविर नष्ट किए गए और 7 शिविरों को निष्प्रभावी कर दिया गया। एक रिपोर्ट।
सेना द्वारा किए गए हमले इतने सटीक थे कि शत्रु पक्ष निष्प्रभावी दिखा और संघर्ष नियंत्रण भी रहा। इस अभियान के दौरान नियंत्रण रेखा के पास एक दर्जन से अधिक आतंकी लॉन्च पैड भी नष्ट किए गए। अभियान से ब्रह्मोस और पिनाका प्रणाली की क्षमता प्रदर्शित हुई। दक्षिणी कमान की ब्रह्मोस इकाई ने एक युद्धक मिसाइल लॉन्च किया और पिनाका का परीक्षण भी सफल रहा। सेना को 6 उन्नत लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर मिले, जिससे हवाई क्षमता में वृद्धि हुई। भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गोला बारूद 91% स्वदेशी हैं। इस वर्ष सेना में नई तकनीक अपनाने के मामले में तेजी आई है। रणनीतिक बढ़त के लिए एच डेटा सेंटर स्थापित किए गए। सेना ने सुरक्षित और विकसित भारत के लिए चाणक्य रक्षा संवाद का आयोजन भी किया। समाचार कक्ष से मैं दीपमाला कौशिक।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका जा रहे हैं। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उनका 80 वर्ष की उम्र में कल निधन हो गया।
खालिदा जिया की अंतिम नमाज नमाजे जनाजा आज दोपहर 2 बजे ढाका में संसद भवन के साउथ प्लाजा और मानिक मिया एवेन्यू में होगी। उनके निधन के बाद बांग्लादेश सरकार ने 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। आज के दिन सार्वजनिक अवकाश रखा गया है। अंतिम सरकार ने कहा है कि अस्पताल से शव ले जाने से लेकर दफन तक पूरी प्रक्रिया पूरे राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई के कई देशों के प्रतिनिधि भी अंतिम संस्कार में शामिल होने की उम्मीद है। खालिदा जिया का निधन मंगलवार सुबह ढाका के एवर केयर अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ। वह 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही और कई दशकों तक देश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाती रही। नवल संघ परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि काशी और तमिलनाडु के बीच का संबंध ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि सभ्यतागत और आध्यात्मिक भी है, जिसने हजारों वर्षों से भारत को एकजुट रखा। कल रामेश्वरम में 4थे काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि ये भारत की साझा विरासत का प्रतीक है, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना प्रगाढ़ होती है। शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की युवा लेखक मार्गदर्शन स्कीम पीएम युवा के तीसरे चरण की प्रतियोगिता के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके अंतर्गत 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी की 43 कृतियों का चयन किया गया है। चयनित कृतियों को 6 महीने के भीतर पुस्तक का रूप दिया जाएगा। प्रत्येक चयनित लेखक को प्रतिमाह 50,000 रूपये की छात्रवृत्ति और प्रकाशित पुस्तक पर 10% की आजीवन रॉयल्टी भी प्राप्त होगी। पुस्तकों का पहला सेट अगले वर्ष प्रकाशित किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा और बर्फबारी हो रही है। कल गुलमर्ग, साधना टॉप और तुलैल घाटी सहित ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने आज रात से लेकर 1 जनवरी तक कई स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। वहीं लद्दाख में तापमान में लगातार गिरावट के कारण रात में शीतलहर चल रही है। पूर्वी लद्दाख में न्यूनतम तापमान 0 से 15.5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। वहीं पश्चिमी लद्दाख में तापमान 0 से 9 डिग्री कम दर्ज किया गया। आज लद्दाख के ऊंचे इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग ने बिहार में कड़ाके की ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में घने कोहरे की आशंका है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घने कोहरे के कारण रेलगाड़ियों की आवाजाही पर भी काफी असर पड़ा है। और अब खेलों की बात। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने विश्व बिल्ड्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। दोहा में चल रहे सेमीफाइनल में उज़्बेक खिलाड़ी नोदिरबेक अफसोसत्तरोव से हारकर उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। उधर एक अन्य सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन मैग्नस कार्लसन अमरीका के फेबियानो कारुआनो को हराकर फाइनल में पहुंच गए हैं, जहां उनका मुकाबला अब्दोसत्तरोव से होगा। भारत ने श्रीलंका को पांचवें महिला 2020 क्रिकेट मुकाबले में 15 रन से हराकर श्रृंखला 5-0 से जीत ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन ही बना सके। कप्तान हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच और शफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। नववर्ष 2026 के आगमन को लेकर दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी में नए साल के जश्न पर सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नववर्ष के अवसर पर कैनॉट प्लेस, इंडिया गेट और इनके आसपास के क्षेत्रों में आज शाम 7 बजे से वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं मुंबई में भी नए साल के आयोजनों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 17,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आज शाम से शहर के प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है और तत्काल सहायता की आवश्यकता की स्थिति में लोगों को पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 या 112 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ वार्ता का समाचार जनसत्ता ने सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अर्थशास्त्रियों ने निवेश बढ़ाने के सुझाव दिए। प्रधानमंत्री ने कहा, आर्थिक वृद्धि के लिए सतत सुधार जरूरी। हिंदुस्तान ने कोहरे का कहर शीर्षक से मौसम की खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, विमानों ट्रेनों की रफ्तार थमी। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया, कल बदलेगी हवा। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, पर्यटकों की भीड़, कोहरे का कहर, फ्लाइट रद्द होने पर मिलेगी सुविधा। जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी इकोनॉमी बना भारत, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र प्रकाशित की है। पहली बार कर्तव्य पथ पर देख सकेंगे डबल हम्प ऊंट। ईस्टर्न लद्दाख की कठिन परिस्थितियों में आर्मी को देते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट। जांस्कर पोनी ड्रोन गिराने वाले चीर भी दिखेंगे, नवभारत टाइम्स की खबर है। एक दांत गिरने से भी याददाश्त होगी कम, वैज्ञानिकों ने कहा। दिमाग में यादें बनाने वाले हिस्से प्रभावित हुए, हिंदुस्तान ने सिंह शीर्षक से यह खबर प्रकाशित की है।
धन्यवाद सिद्धार्थ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के लिए नई तारीख जारी की। दिल्ली सरकार ने अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने, मामूली उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, अदालती मामलों में कमी लाने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी थी। रेलवे ने कोटा नागदा वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी का परीक्षण किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और खेलों में, महिला क्रिकेट में भारत ने पांचवें और अंतिम 2020 मैच में श्रीलंका को 15 रन से हराकर श्रृंखला 5-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।